ओम शांति।
संगम योग ईश्वरीय प्यार का सुख लेने का योग है और हम सभी लक्की आत्माएं हैं जिनको भगवान स्वयं प्यार देता है। अपने प्यार की दृष्टि से, प्यार भरे शब्दों से हम सबके अंदर प्यार भरता है। ऐसा प्यार जो जन्म जन्म हमारे जीवन का आधार बन जाता है। तो हमें कल की बाबा की मुरली के अनुसार भी अपने से बात करनी है कि हम ईश्वरीय प्यार में समाये कैसे रहें, जबकि मनुष्य मनुष्य के प्यार में भी समाया रहता है, जबकि लोग अपने धंधों के प्यार में भी समाये हुए हैं, समाये हैं ना धंधों के प्यार में, तो हम भगवान के प्यार में क्यों ना समाये, जिसने हम सभी को नया जीवन दिया है, जिसने हम सभी के जन्म जन्म के दुख दूर किए हैं और हमारी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, उसके प्यार में न समाकर अगर हम वस्तुओं के और मनुष्यों के प्यार में इस समय अपना समय बिताएंगे तो हम जन्म जन्म आपसी प्यार से भी वंचित रहेंगे। बहुत गहरा रहस्य है ये, जो इस समय ईश्वरीय प्यार में मगन है उन्हें जन्म जन्म संबंधों का प्यार मिलता है। और वो आत्माएं जो इस समय, जबकि भगवान आया है प्यार की बरसात करने, ईश्वरीय प्यार का सुख नहीं ले पाते, उन्हें जन्म जन्म आपसी प्यार की भी तलाश रहती है, कमी पड़ जाती है। इसलिए हम सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को ईश्वरीय प्यार से भरपूर करना है और उसकी विधि है, जितना जितना हम मनुष्यों से और वस्तुओं से, कार्यों से अपने प्यार को ढीला करेंगे, अपने प्यार की रस्सियों को खत्म करेंगे, उतना उतना ईश्वरीय प्यार में मगन रहने का अनुभव होगा। हम रोज जानते हैं, देख सकते हैं, अगर किसी को खाने पीने से प्यार हो, पहनने से प्यार हो, शरीर का श्रृंगार करने से प्यार हो, तो वो ईश्वरीय प्यार में मगन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। प्यार एक ही तरफ चलता है, उसकी दिशाएं दो नहीं होती। चाहे मनुष्यों से कर लो, चाहे भगवान से, चाहे वस्तुओं से कर लो, चाहे बाबा से, उसकी एक ही दिशा है, दो नहीं। इसलिए जिनको ईश्वरीय प्यार में, जो कल बाबा ने कहा, बहुत बड़ा बल है सब कुछ भुला देने का, सब तरह की माया से मुक्त कर देने का, मेहनत से मुक्त कर देने का, उस प्यार का अनुभव करना है। रोज सवेरे उठकर अपने मन को, या ऐसे कहें अपने संपूर्ण जीवन को, एक बार कम से कम रोज ईश्वरीय प्यार से ओतप्रोत कर लें, भरपूर कर लें, भीग जाए हमारा जीवन ईश्वरीय प्यार के छींटों से, मगन हो जाए मन एक बार, तो ऐसी रूढ़िहान करें रोज बाबा से, उसके एहसानों को याद करें, उसने जो उपकार किए हैं हमारे ऊपर, हमें नया जीवन दिया है, कांटों से फूल बनाया है, निश्चिंत जीवन दिया है, सहारा बन गया है हमारा, हमारे ऊपर छत्र छाया बन गया है, उसे भूल हम और किसे याद करें? आज की मुरली को याद करें जरा सवेरे। देवताओं के साथ भी हम बहुत जन्म रहे, अब क्या दिल चाहता है, क्या दिल चाहता है माताओं का? मनुष्यों के साथ भी 2500 साल रह के देख लिया क्या मिला, और देवताओं के साथ भी 2500 साल रह के देख लिया कितना सुख मिला, और अब जी चाहता है भगवान के साथ रहें। ये मुरली हम कई बार सुन चुके हैं, साकार मुरली। अब हम अपने से इस तरह बात करें कि मनुष्यों के साथ, आत्माओं के साथ तो पूरा कल्प रहने का भाग्य मिलेगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ रहे, उसकी छत्र छाया में रहे, उसके प्यार में जीवन व्यतीत करे, उसके साथ ही सब कुछ करे, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्यवान आत्माओं को ही मिला है, सारे संसार में से चुनी हुई आत्माओं को। एक तो बाबा ने हम सबको करोड़ों में से चुना है, हम में से भी अगर हम सभी ईश्वरीय प्यार का रस न चख पाए, संसार में से चुनी हुई आत्माएं, तो और कौन चखेगा। हमें इस तरह अपने से बात करनी है कि इन सांसारिक धंधों में, इन सांसारिक व्यवसायों में, उलझनों में तो हम जन्म जन्म उलझे रहे और फिर उलझे रहेंगे। अब समय है, संगम युग है, ईश्वरीय मौजों का युग, ईश्वरीय आनंद का युग, ईश्वरीय सुखों का युग, निश्चिंत जीवन जीने का युग, अनंत प्राप्तियों का युग। अब हम वो कर ले जो समय का वरदान है। आती है ऐसी दिल से आवाज, क्या चाहता है आपका दिल, भाई बताएंगे, यही करना है या संसार में उलझे रहना है, बोलो, यही करना है ना। माताओं को भी यही करना है या घर में उलझे रहना है। रहना घर में है, उलझे रहना है या निकले रहना है। कह सकते हैं आप कि हम तो उलझना नहीं चाहते, पर पता नहीं क्यों उलझे हुए हैं। मनुष्य सोचता है कि पता नहीं क्यों उलझे हुए हैं, उलझना तो कोई भी नहीं चाहता। हर बाबा का बच्चा चाहता है कि ईश्वरीय आनंदों में जीवन का हर पल व्यतीत हो, ऐसे सुख से आत्मा भरपूर हो जाए जो और किसी सुख की इच्छा मात्र भी न रहे। हर एक आत्मा चाहती है, पर उलझ जाती है, अपने ही संकल्प उलझा देते हैं मनुष्य को, और उलझा देती है मनुष्य की अपनी इच्छाएं, कामनाएं, अपना उसका अहम, अपने ही कुछ ऐसे संस्कार। और अगर मनुष्य चाहे बिल्कुल उलझनों से निकलना तो निकल भी सकता है, क्योंकि इस समय ईश्वरीय सहयोग है, साथ है वो। हमें सबको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि संगम युग को एक वरदान है, क्या, कि जो आत्मा जो कुछ चाहती है सच्चे दिल से वो पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल हजारों लाखों आत्माओं का अनुभव किया हुआ वरदान है कि जो जिसने चाहा वही पूर्ण हो गया। किसी ने चाहा हो कि बाबा तुम आए हो तो धन संपत्ति बहुत हो हमारे पास, सेवाएं करें, मिल गई, फिर सेवाएं नहीं करते, आधा भूल जाता है, फिर तो उलझ जाते हैं। जो जिसने मांगा वो मिल गया, लेकिन जो मांगा वो मिलने के बाद वो किया जो बाबा चाहते हैं या नहीं किया, इसका बड़ा महत्व है। बाबा तो हमारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है, पर हम बाबा की श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करने की उमंग कहां तक रखते हैं, इसका बहुत महत्व है। हमें धन चाहिए या ईश्वरीय सुख। जो गरीब हैं वो भी पूछ लें अपने से, गरीबों को बहुत भारी लगता है बाबा के पास आके भी, कि यहां भी साहूकारों की तो मौज है, लगता तो होगा, छुपी हुई बात तो नहीं है कि साहूकारों की बहुत मौज, जिसके पास पैसे वो आगे, गरीब पीछे, भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं पैसे वाले, तो लोगों को लगता है कि गरीबों का तो भगवान के पास भी स्थान कम है, परंतु ऐसा नहीं है, ये सोचना गलत है। कोई छलांग मार के साहूकार बाबा से मिलने तो जा सकता है स्टेज पे, परंतु ईश्वरीय मिलन का सुख स्टेज पे छलांग मार के बाबा के हाथ से टोली खाने से नहीं मिल जाता, वो तो मिलता है उसके प्यार में मगन होने से, क्योंकि वे सुख बहुत क्षणिक हैं। बस स्टेज पे गए, टोली मिली, दृष्टि मिली और नीचे आए, किसी ने कह दिया क्यों गए थे, तो वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो अब बिना अपनी मेहनत के मनुष्य को, दुनिया में भी कहावत है ये, सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। धन भी अगर बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए तो सुखदायी नहीं होता। मेहनत से जो कुछ मनुष्य प्राप्त करता है वो अविनाशी है, स्थायी चलता है और अनंत काल तक सुखदायी होता है, मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए जो बाबा के गरीब बच्चे, मैं उन्हें कहूंगा अनुभवों की बात कि गरीबी संगम युग पर वरदान है। अगर कोई इसको वरदान बनाए, अगर कोई इन संकल्पों में अपने को न उलझाए कि हम तो गरीब हैं, हमारा तो मान नहीं है, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हम भी पैसे वाले होते तो सेवाओं में बहुत आगे बढ़ जाते, ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है ना कि हमें मान मिले। मैं सोचता आता था अपने जीवन में बहुत पहले की बात कि हमने भगवान से ये तो कभी नहीं मांगा था भक्ति में कि जब तुम आओ तो हमें बहुत मान मिलना चाहिए। मांगा था किसी ने? ये तो नहीं मांगा था, कहा तो कुछ और था। तो मान की प्राप्ति कोई विशेष प्राप्ति नहीं है यहाँ। अगर हमें मान चाहिए तो हम उस तरह का मान लें जिस तरह का मान किन्हें मिलता है, हमारे इष्ट देव देवी स्वरूप को दिया जा रहा है भक्ति में, हमें तो दिया जा रहा है वो, वैसा मान हम प्राप्त करें। ये क्षणिक मान नहीं जो पैसे से मिल जाता है, कुछ काम करने से थोड़ा बहुत मिल जाता है, कुछ पद पोजीशन से मिल जाता है। इसलिए जो भी गरीब बाबा के बच्चे हैं वो अपनी गरीबी को वरदान बना सकते हैं। भगवान गरीबों पर सचमुच मेहरबान होता है और गरीबों के पास माया कम होती है, इसलिए वो माया से निकलकर मायाजीत बनकर बाबा के बहुत समीप पहुंच सकते हैं। ऐसी बहुत आत्माएं पहुंची हैं, हम जानते हैं उनको, मैं पर्सनली जानता हूं, जो गरीब परिवारों से निकलकर बहुत आगे चले गए हैं, धनवानों को सबको पीछे छोड़कर, पद पोजीशन वालों को पीछे छोड़कर। तो फिर से हम वहीं आ जाएं, हमें ईश्वरीय प्यार में स्वयं को मगन करना है। बाबा जिस तरह से मुरलियां हमारे सामने रख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह से हमें देखते हैं, जो बाबा की भावनाएं दिखाई देती हैं, उससे लग रहा है कि बाबा अंतिम समय की तैयारी हम सबसे करा रहे हैं। इसलिए हम सभी को बाबा ने संगम युग पर एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी हुई है। कौन सी है वो? कौन सी है? सबके पास है दिव्य बुद्धि, सबके पास अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो भगवान को पहचानती हो, ऐसी बुद्धि जो महान कार्य की ओर हमें ले चलती हो, ऐसी बुद्धि जो तीनों लोकों को और तीनों कालों को देख सकती हो, ऐसी बुद्धि जिसमें अच्छे और बुरे का विवेक भरा हुआ हो, वो बुद्धि हम सबको प्राप्त है। हम में से कोई ऐसा है जो थोड़ा भी पाप करके पछताता ना हो, थोड़ी सी भी गलती हो जाए और महसूस न करता हो कि गलती हो गई? कोई है ऐसा? यह सबको महसूस होता है, थोड़ी सी भी गलती हुई और विवेक को पता चलता है कि गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारे श्रेष्ठ विवेक का, अच्छी बुद्धि का लक्षण है। तो जिनके पास अच्छी बुद्धि है उन्हें समय को पहचानते हुए, बाबा की इन सब भावनाओं को समझते हुए, अब अपने को सभी तरह की उलझनों से निकाल देना चाहिए। आप संकल्प करेंगे उलझनों से स्वयं को निकालने का तो बाबा आपको निकाल देंगे। और इसके लिए मैं आप सभी को एक अच्छी बात गिफ्ट के रूप में यहां से देना चाहता हूं, आप उसका अभ्यास करें, और वो है समर्पण भाव का अभ्यास, जो आत्मा को सरल करेगा, हल्का करेगा, निश्चिंत बनाएगा। समर्पण भाव, सब कुछ बाबा का, सब कुछ उसके लिए, दो शब्द याद रखेंगे, दो वाक्य, सब कुछ बाबा का, हमारा कुछ नहीं, और सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो उसके लिए। जितना हम समर्पण भाव का अभ्यास करेंगे उतना जीवन विघ्नों से मुक्त होता जाएगा। जो कुछ भी जीवन में आए उसे समर्पित करते चलो। बोझ आ जाए समर्पित कर दो, चिंता आ जाए समर्पित कर दो, टेंशन हो जाए समर्पित कर दो, क्या होगा कैसे होगा उलझन हो जाए समर्पित कर दो बाबा को, और देखो अनुभव करो क्या करता है बाबा। और ये जीवन का एक बहुत सुंदर अनुभव आप सभी अपने बहुत जल्दी एक मास के जीवन में ही कर सकते हैं, लंबे चौड़ी बात नहीं। रोज अनुभव होने लगेगा, अब समय ऐसा आ गया है जब बाबा स्वयं अपने बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए उत्सुक है, इच्छुक है, उसको संकल्प है कि जल्दी जल्दी इन्हें सब कुछ दे दूं, इसका हम फायदा उठा लें। कल की मुरली पे तो बहुत कुछ चर्चाएं की जा सकती हैं, परंतु एक टॉपिक दिया गया था हमें, शायद आप सबने मांगा है, वो मनोबल कैसे बढ़ाएं और मनसा सेवा कैसे करें। बाबा अपनी इन मुरलियों में भी कहते आए हैं कि अब ज्ञान देना, कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो सभी करते हैं, कॉमन बात है, लेकिन आत्माओं को सकास देना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, उन्हें शक्तियां देना, शांति देना, उमंग उत्साह दिलाना, ये काम अब तुम सबको करना है। आप एक स्थान पर बैठकर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो दूसरी आत्माएं दूसरे स्थानों पर स्वयं ही सेवा करेंगी, उनमें सेवाओं की उमंग आएगी। अगर वो ठंडे हैं, वो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस जाते ही वो करने लगेंगे। तो हमारी सकास का बहुत ज्यादा महत्व है। आत्माएं जब बहुत निराश होंगी जीवन में, जब उन्हें लगेगा कि हार होती जा रही है, जब उन्हें लगेगा कि कोई सहारा नहीं है संसार में, धन जब उनका सहारा नहीं रह जाएगा, तब हमारे द्वारा भेजी गई सकास उनके लिए सहारा बन जाएगी। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि ऐसा समय आ रहा है जब इस संसार में मनुष्य, हर मनुष्य अकेला रह जाएगा, अकेला, कोई साथी नहीं उसका, न धन न मनुष्य, न उसके साथी, न फ्रेंड्स न रिलेटिव्स, कोई साथी नहीं रहेगा, केवल नहीं बाबा तो होगा ही नहीं उनके साथ, अकेले अकेले स्वयं, और उनके साथी होंगे केवल उनके कर्म, अच्छे और बुरे, वो परछाई की तरह चारों ओर घूमेंगे। पाप जिसके ज्यादा है उन्हें लगेगा भूत हैं चारों ओर, भय अशांति बिना मतलब की उदासी, पता नहीं चलेगा क्यों परेशान है उदास हैं। और जिनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म भी परछाई की तरह आगे पीछे। ऐसे समय में हमारी सकास, क्योंकि बाबा का काम हम करेंगे, हमारे माध्यम से बाबा अपना काम करेंगे, हम निमित्त बन जाएंगे, हमने अच्छे अभ्यास किए होंगे, तो बाबा की शक्ति हमारे द्वारा उन आत्माओं को जाकर उन्हें अनुभव कराएगी मदद का और सहारे का। इसलिए समय अनुसार सकास देने की सेवा, मनसा सेवा, इसकी बहुत आवश्यकता है। वैसे तो दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक हैं, मनोबल कैसे बढ़ाएं और वाइब्रेशंस कैसे दें, मनसा सेवा कैसे करें, फिर भी थोड़े में मनसा सेवा के कई स्वरूप हो सकते हैं। एक स्वरूप है, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, एक बार बाबा की अव्यक्त मूल्यों में आया है अब तक 77 में, रूहों से रूरिहान करो। शिव बाबा से तो रूरिहान होती है, लेकिन सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान, योग युक्त होकर जिन आत्माओं को हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो मन के द्वारा कहें, जैसे हम यहां आपस में बात करते हैं, मन मन से बात करे तो हमारी बातें, हमारे संकल्प वो आत्माएं ग्रहण कर लेंगी, सवेरे के समय विशेष, क्योंकि तब मनुष्य के मन में संकल्पों के तूफान नहीं होते, मन शांत होता है। तो हम रूहों से रूरिहान करके अनेक तरह की सेवाएं सवेरे कर सकते हैं। कभी बाबा ने ऐसे कहा था कि सवेरे उठकर आह्वान करो आत्माओं का, उदाहरण के लिए कि आज 10 इंजीनियर्स हमारे सेवा केंद्र पर आ जाएं, आह्वान करो, अगर आपकी योग युक्त अवस्था होगी तो किन्हीं भी 10 इंजीनियर्स को आकर्षण होगा, जिन्होंने सुना होगा ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान कि चले वहां चले, और रोज अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सब आने लगेंगे। एक ये मनसा सेवा का स्वरूप है जो बाबा के द्वारा बहुत पहले बताया गया है। दूसरा मनसा सेवा एक नेचुरल स्वरूप में होती है, जैसी हमारी मनसा वैसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते हैं। हमारी मनसा में स्नेह भरा हुआ है तो माहौल स्नेह से भर जाएगा, हमारी मनसा शांत है, हमारी मनसा सुख देने की है तो चारों ओर सुख के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे, हमारी मनसा दुख देने की है तो क्या हो जाएगा, दूसरों को दुख का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि हम पूर्वज हैं, मास्टर क्रिएटर हैं, रचयिता हैं। एक ये नेचुरल स्वरूप है मनसा के द्वारा कार्य इस तरह होते हैं, परंतु मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस फैलते हैं। कल बाबा ने कहा और पहले भी कहा है कि अगर बेहद का वैराग नहीं तो सकाश नहीं दे सकते, याद है कल कहा है ना, सकाश देनी है, सकाश माना शक्तियां देनी है दूसरों को, अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, किसी को शांति देनी है, तो अगर बेहद का वैराग नहीं है तो हम दे नहीं सकेंगे सकाश। बेहद के वैराग की मैं आपको एक विधि बता देता हूं, सभी अपने घरों में रहते हुए इस तरह का अभ्यास करें तो जीवन में वैराग भरता जाएगा। मैंने एक व्यक्ति को ये विधि बताई थी उसे 3 मास पहले, आज वो आया हमसे मिला, मुझे याद दिलाया उसने, तो मुझे ख्याल आया कि आपको भी आज मैं ये विधि बता दूं। साकार में जब बाबा थे तो ये विधि बताया करते थे, विधि थी, वो व्यक्ति बहुत साहूकार है, विदेश का बहुत साहूकार, उसका सारी दुनिया में बिजनेस है, तो मैंने उसे बताया था पिछली बार 3 मास पहले कि आप ये प्रैक्टिस किया करो कि आपका सब कुछ नष्ट हो रहा है, धन संपत्ति नष्ट हो गई, 10-20 मकान है सारी दुनिया में बिल्डिंग्स, वो भी नष्ट हो गई, आपके परिवार भी नष्ट हो गए, सबके सब के डेड बॉडी आपके सामने पड़े हैं और देखो कि आपकी स्थिति कैसी है। तो आज बताने लगा, भाई मेरी स्थिति तो अच्छी नहीं रहेगी, मैंने बहुत बार ये सोचा है, प्रयोग किया है, ये दृश्य तैयार किया है, तो मेरी स्थिति तो अच्छी नहीं रहती, मैं क्या करूं। और तो हम सब भी ये कर सकते हैं, हमें ये पता है कि हमें सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है, पता है सबको, पता है माताओं को पता है, जाना है या कुछ ले जाएंगे साथ, कुछ नहीं ले जाएंगे, नहीं कुछ तो सूक्ष्म चीजें तो ले जाएंगे, और जो कपड़े जेवर धन संपत्ति वो सब ले जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। हमें सबको पता है कि जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो रहेगा, जो कुछ भी दिखता है ये पहाड़ पत्थर मकान दुकान सब ये कुछ नहीं रहेंगे, हम उन्हें रखना भी नहीं चाहेंगे, और अगर वो रह भी गए तो स्वर्ग के सुख उतने होंगे कि उनकी ओर हम देखेंगे भी नहीं। हमारे अब के सुंदर मकान सतयुग के मकानों की भेंट में मिट्टी के कैसे लगेंगे, हम आना भी नहीं चाहेंगे उनमें। इसलिए जो कुछ आंखों से दिखता है, जो मनुष्य में आंखों से दिखते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिनसे हमारा बहुत प्यार है, जिनके प्यार में हम जीते हैं इस संसार में, जिनके लिए हम अपना जीवन लगा रहे हैं इस संसार में, टाइम लगा रहे हैं, संकल्प लगा रहे हैं, वो सब हमारे देखते देखते नष्ट हो जाएंगे। आप एक चित्र बनाओ अपने सामने कि आपकी सब धन संपत्ति, एक एक आपका प्रियजन जिसे आपका बहुत प्यार है, जिसके लिए आपने जीवन लगाया हुआ है, वो आपके सामने नष्ट हो रहा है, तो कैसी स्थिति रहेगी। नष्ट होना है, हम न चाहें तो नहीं होगा, होगा ही, इसलिए हम चाहें। हमें अपनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो कुछ होने जा रहा है वैसे ही संकल्प हम कर दें, अपने पैरेलल समान संकल्प कर दें और अपने मन को तैयार कर दें कि यही होने जा रहा है, यही तो होगा, इसी के लिए तो भगवान आया और इसी के लिए हमने साधनाएं की हैं, घर चलें स्वर्ग में चलें, ये पुराना सब कुछ नष्ट हो जाए। हमारी इच्छाओं के अनुरूप हो रहा है, जैसा हमने चाहा वैसा हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा जैसा हमने नहीं चाहा। वैसे हमने नहीं चाहा कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, पर हमने चाहा भी है कि हमारा पुराना नष्ट हो जाए और नया सब कुछ हमारे पास आ जाए। तो जीते जी रोज कि ये सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, उसको नष्ट होता देख हम अपनी स्थिति को चेक करें कि वो कैसी रहेगी और कैसी रखना चाहेंगे हम, कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो हम रो रहे हो, अचल अडोल हो, कैसे होंगी माताएं हैं, साक्षी होके देख सकेंगे। आपने बहुत मेहनत करके 25 लाख रुपए कमाए हो, मकान बनाया हो और कल नष्ट होने लगे, साक्षी हो जाएंगे, कहेंगे सारा जीवन बर्बाद हो गया, 25 लाख कमाए थे, एक झटके में उग्रवादियों ने बम लगा के तोड़ दिया, बड़े खराब हैं ये बाबा, इन्हें नष्ट कर दो सबको, ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि एक झटके में तो सब कुछ नष्ट नहीं होगा, और कुछ कारण दिखाई देंगे, ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, प्रैक्टिकल लोग दोषी दिखाई देंगे कि ये इसने किया, ये इसने किया, तो हम उन्हें दोष देने में लग जाएंगे, या किसी ने भी किया हो ये तो सब नष्ट होना ही था, होना ही है, ये बहुत बड़ी स्थिति है, इसके लिए हमें पहले से ही अपने को तैयार करना है। और दूसरों को मदद करने के लिए मनसा सेवा, वाइब्रेशंस देने का अभ्यास बढ़ाना है, तभी दे सकेंगे जब अपने से प्रभावित नहीं होंगे, अपने सुख दुख हार जीत इनसे प्रभावित होते रहे तो जो कुछ हमें करना है वो हमसे भूल जाएगा। अब सोच लो आप, ऐसा होने तो जा रहा है अगले 5-7 सालों में ही, कि जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं रहेगा, तो पहले से ही हमें क्या करना चाहिए, मेरापन निकाल देना चाहिए। इसलिए बाबा ने राजयोग की परिभाषा दी है, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। इस स्थिति तक हमें पहुंचना है, राजयोग अर्थात संपूर्ण रूप से बेगर बन जाओ, मेरा कुछ नहीं, यहां तक पहुंचना ही है। कल बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा वो कोई विशेष बात नहीं, हम पहले ही बेहद के वैराग में स्वयं को स्थित कर दें धीरे धीरे, क्योंकि ये स्थिति एक दिन में आने वाली नहीं है, धीरे धीरे हम अपनी रस्सियों को, जो लगाव की सूक्ष्म रस्सियां हैं ममत्व है, उनको हटाते चले, तब हम वाइब्रेशंस देने की सेवा करेंगे। तो वाइब्रेशंस अच्छे वही दे सकेंगे जिनका योग अच्छा होगा, जिनके अंदर पवित्रता अच्छी होगी, और जिनकी तीसरी चीज क्या, भावनाएं अच्छी होंगी। भावनाएं अगर ईर्ष्या द्वेष घृणा हुई तो वाइब्रेशंस नहीं दे सकेंगे। योग अच्छा, पवित्रता अच्छी और भावनाएं अच्छी। भावनाएं अगर दुर्भावनाएं हैं, अगर भावनाओं में कटुता है, अगर भावनाएं दुख देने की हैं, तो वाइब्रेशंस नहीं दे सकते। तो वाइब्रेशंस फैलाने हैं अपनी योग की अच्छी स्थिति के द्वारा और विश्व कल्याण की भावना के द्वारा। हमारे वाइब्रेशंस की सेवा, मनसा सेवा, हमारे मनोबल से जुड़ी हुई है। एक मनोबल वो जो संसार में प्रयोग किया जाता है, ये शब्द विल पावर, मनोबल, और हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं मनोबल अर्थात मन की शक्तियों को बढ़ाना। अर्थ तो वहां भी यही है पर लोग इसको नहीं जानते। मन की शक्तियों को बढ़ाना, हमारा योग, हमारा चिंतन, प्योरिटी और हमारी कई और धारणाएं हमारी मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही हैं। पर हम पहले ये विचार कर लें कि मन की शक्तियां नष्ट किसने की। मन तो बहुत शक्तिशाली था, ऐसा शक्तिशाली कि जो सोचते थे वही कर लेते थे। मनोबल अर्थात जो सोचे वही कर सके, असफलता में निराश न हो, हार न मान जाए। मनोबल अर्थात जिनके लिए कुछ भी करना कठिन या असंभव न हो, ऐसा मनोबल हम सबके पास है, क्योंकि हम सब आत्माएं इस संसार में चुनी हुई आत्माएं हैं। चुनी हुई हैं अर्थात सबसे शक्तिशाली हैं। इस संसार में हम सभी सबसे अधिक शक्तिशाली आत्माएं हैं। कैसा लगता है ये सुन के? कुछ रिएक्शन नहीं दिखाई दिया चेहरों पे आपके? हैं शक्तिशाली? बहुत अच्छा तो है, शक्तिशाली हैं, अपने को शक्तिशाली समझते हैं। हैं शक्तिशाली? क्यों क्यों है शक्तिशाली? बाबा तो है ही, और कुछ बताओ। कैसे कहेंगे हम कि अपने को शक्तिशाली? ऐसे ही अपनी महिमा खुद कर लें कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। और बोलो, और माताएं भी शक्तिशाली हैं? हैं हैं माताएं शक्तिशाली? शक्तिशाली व्यक्ति रोता है कभी? नहीं रहती है माताएं? कभी रो लेती है थोड़ा बहुत छुप के? कोई कमजोर आत्माएं माया को जीतने का साहस रखती है दुनिया में? बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों से आप मिलकर देखो, जो बहुत शक्तिशाली समझे जाते हैं, पहलवान हो, युद्ध में बहुत कुशल हो, डरते ही न हो बिल्कुल, उनको कहो जरा माया को जीत सकते हो? हैं? नहीं, अगर हम बता भी दें, हम बता दें उनसे कि काम क्रोध को जीत सकते हो? संसार का कोई शक्तिशाली व्यक्ति काम क्रोध को जीतने का साहस करेगा? होता ही नहीं लोगों में। काम को जीतना ये कठिन काम है, असंभव है, गलत है। कई तो कह देंगे गलत ही है ये तुम्हारी बात। और जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया हो, उनसे शक्तिशाली संसार में और कोई नहीं होता। जिनको बाबा ने, सर्वशक्तिमान ने सर्व शक्तियों का वरदान दे दिया हो, आते ही सारी शक्तियां दे दी हो, उनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं होता। तो माताएं भी बहुत शक्तिशाली हैं। क्या यादगार है आपकी शक्तिशाली होने का? हाँ, भूल गए आप, मैं जरा और शब्दों में पूछ लिया है। मंदिरों में क्या यादगार है आपका? दुर्गा। अब याद आ गया ना? कौन है दुर्गा आप में से? हाथ उठाओ जरा। महाकाली उठा लो। चलो, हैं दुर्गा और महाकाली माताएं, जिन्होंने काल महाकाली बनकर माया को जीतने का चैलेंज किया, वो शक्तिशाली है ना? वही तो दुर्गा और महाकाली हैं। महाकाली माना विकारों पर विकराल रूप धारण कर लिया है, विकारों को बख्शा नहीं, माफ नहीं किया, उन्हें नष्ट किया है। तो हम सब शक्तिशाली हैं, हमें सबसे पहले ये याद रखना है, ये याद रखना है कि हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, हारने के बाद भी हार नहीं मानना है। माया से हार हो भी जाए तो भी मन से हार नहीं माननी है, क्योंकि विजय हमारी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी ना, या और किसी की। माया को कौन जीतेंगे इस संसार में? माया को देश निकाला देना है ना, विश्व निकाला। देश निकाला छोड़ो, विश्व से बाहर निकाल देना है। कौन निकालेंगे? हम सभी निकालेंगे ना। तो हम सब शक्तिशाली हैं। ये संकल्प हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में न जाके आपको कोई थोड़ी थोड़ी सी बातें रोज अपने जीवन में अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सभी एक काम किया करें। कोई भी काम जो आपके सामने है, अगर वो 6 घंटे में होता है, तो अपने मन में संकल्प करो कि मैं आज इसको 5 घंटे में पूरा कर लूंगा। जो काम आपको लगता है कि आज पूरा नहीं होगा, संकल्प करो आप कि मुझे आज ही इसको पूरा कर देना है। इससे मनोबल बढ़ जाएगा। समझ गए ना युक्ति? कोई भी काम आप ले लो रोज, जो आप काम करते हैं नॉर्मल अपने जीवन में। माताओं के पास ज्यादा काम हो गया, मान लो 10 मेहमान हो गए और आप अकेले हैं, और आपको लगे कि कोई मदद करे तो अच्छा है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं, आप संकल्प करो मैं अकेली ये सारा काम कर दूंगी आज, तो मनोबल बढ़ जाएगा। ये मनोबल बढ़ाने की सहज विधियां हैं। कि जो काम आपको कठिन लग रहा है, जिसमें देर हो रही है, जिसमें आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, कि नहीं मैं अकेला ही करूंगा क्योंकि भगवान साथ है, जिसके साथ भगवान हो वो अकेला कितनों के बराबर हो गया? दो के बराबर नहीं। हाँ, कितनी गिनती आप देंगे दे लो, कितनी जीरो लगाएंगे? जिसके साथ भगवान हो वो अकेला व्यक्ति कितनों के बराबर हो गया? इस नशे के साथ के भगवान हमारे साथ है, ये काम हम कर ही लेंगे, इस तरह से आपको रोज अनुभव होगा कि मन की शक्ति कार्यों को किस तरह कम समय में पूरा करा देती है। एक बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है, आप जब चाहे उसका अनुभव कर ले जीवन में, कि अगर तुम्हारी स्थिति रिफाइन होगी, रिफाइन शब्द आप समझ सकते हैं, अगर तुम्हारी स्थिति रिफाइन हो, रिफाइन माना स्वच्छ, डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुशी की स्थिति, नशे की स्थिति, तो तुम उतने ही समय में 10 गुना 100 गुना काम कर सकते हो, 10 गुने का अनुभव कर सकते हैं। डबल के अनुभव से हम शुरू करें कि हमारी स्थिति अच्छी है तो उतने ही समय में, एक ही घंटे में हम पहले से डबल काम कर लेते हैं, फिर 3 गुना, फिर 10 गुना, और फिर आगे चल के हमें लगने लगेगा कि जब हमारी स्थिति और रिफाइन हो जाएगी तो हम अपने संकल्प से ही अनंत गुना काम कर लेते हैं, संकल्प किया और काम होने लगे। तो इस तरह अपने मनोबल को बढ़ाएं, हम ही करेंगे, हमने ही किया है, कहां मनोबल गया हमारा ये भी जानना जरूरी है। मनोबल किसने छीना आत्माओं का, बोलो? माया ने छीन लिया, माया ने छीन लिया, किस किस रूप से छीना? मनोविकारों ने मनोबल को छीन किया, उसमें भी काम क्रोध, क्रोध बुद्धि बल को भी नष्ट करता है, काम मनोबल और बुद्धि बल दोनों को नष्ट करता है। लोभ, लोभ क्या करता है? लोभ क्या करता है? लोभ से इच्छाओं का विस्तार होता है, और जहां इच्छाएं ज्यादा हैं वहां मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। और मोह, मोह को क्या कहा जाता है? उस दिन भी हमने कहा था, याद है आपको? मीठा जहर, बहुत मीठा लगता है, पर आत्मा को उलझा देता है, बांध देता है। और अहंकार, क्रोध का बड़ा भाई, वो क्या करता है? अहंकार क्या करता है? हैं? जटिल बना देता है जीवन को, तनाव में ले आता है और सुख से अंति नष्ट कर देता है, हर काम को भारी कर देता है। जो योग युक्त हैं उन्हें ये संकल्प रहेगा कि हमारे साथ भगवान है, और जिसके पास अहंकार है उसे क्या अनुभव होगा? कि मेरे साथ कोई नहीं है, उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा, कि मेरे साथ कोई नहीं, अहंकारी व्यक्ति को साथ देने वाला इस संसार में कोई नहीं बचता। तो ये सारे मनोविकार हमारे मनोबल को नष्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजें, कि जिन बातों से भी हमारे संकल्प वेस्ट जाते हों वो हमारे मन की शक्तियों को नष्ट करते हैं। ये हम स्वयं देख लें कि हमारे मन के संकल्प किस किस कारण से वेस्ट जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा और प्रत्यक्ष कारण, बहुत अच्छा है वो, मतलब सब में दिखाई देता है, दूसरों को देखने की आदत, और दूसरों को देखने के साथ एक विशेष चश्मे से देखने की आदत। चश्मा समझते हैं कौन सा? माताओं को है चश्मा, सबको नहीं है, विशेष चश्मे से देखने की आदत। कौन सा चश्मा है? हाँ, दोषी, कहीं अवगुणी दृष्टि का, अच्छो अच्छो में भी अवगुण दिखाई दे, दूर दृष्टि का, जिसको बाबा ने कहा कि दूर की चीजें सब खूब दिखती हैं। कोई व्यक्ति धीरे चल रहा है तो कहेंगे देखा टाइम वेस्ट करा, ठंडा है, सुस्त, चाहे बेचारा योग युक्त चल रहा हो धीमे। कोई व्यक्ति तेज चल रहा है तो कहा देखा चलने की भी रॉयल्टी नहीं, चुप है तो गुंगे हो गए, और ज्यादा बोलते हैं तो सारा दिन चालू ही रहता है स्पीकर। तो अपने अपने ढंग से दूसरों को देखते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, देखते हैं दूसरों को ही देखने में लगे रहते, ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अनुमान और दूसरों को देखना जब दोनों मिल जाते हैं तो संकल्प बहुत तेजी से व्यर्थ चलने लगते हैं और इससे धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो हमें आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना है। मनोबल बढ़ाने का साधन जहां योग है वहीं दूसरा क्या है, दूसरा है शक्तिशाली संकल्प। शुद्ध तो हो ही पर शक्तिशाली संकल्प। शक्तिशाली संकल्पों की हम एक लिस्ट बना सकते हैं अपने पास, ऐसे संकल्प जिनको करते ही शक्ति महसूस हो, तन में भी शक्ति और मन में भी शक्ति। ऐसे शक्तिशाली संकल्पों से भी अपना स्टॉक भर के रखना चाहिए। तो इस तरह रोज अपने मनोबल को बढ़ाने का अभ्यास करें। हार हो जाए, मान लो हम क्रोध को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं और क्रोध आ जाता है रोज, और जैसा कि सभी लोग सुनाते हैं कि जिस दिन क्रोध को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं उसी दिन ज्यादा होता है। कई लोग इसे बहुत परेशान होते हैं। कईयों को हमने एक संकल्प दिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका अभ्यास करो, तो कईयों ने अनुभव सुना कि जैसे ये सोचते हैं मैं परम पवित्र आत्मा और अपवित्र संकल्प आने लगते हैं तो परेशान हो उठते हैं कि क्या हुआ, इसे तो न सोचते तो अच्छा था, ठीक ठाक तो जी रहे थे, तो क्या हुआ ये, क्या हुआ ये। तो ऐसी हार महसूस हो, इसे हार नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है, बाबा क्या कहते हैं इसे, माया विदाई लेती है, निकलती है। ये सबको अनुभव नहीं होगा, बहुतों को ये अनुभव होगा कि क्रोध छोड़ने की प्रतिज्ञा की तो कम होने लगा, कुछ को ये होगा क्रोध छोड़ने की प्रतिज्ञा की तो जरा लगता है कि आता है ये तो निकलता है वो, विदाई लेती है माया, थोड़े दिन में विदाई ले लेगी अगर हम दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे तो हमें लगेगा कि वो चीज छूट गई। आज ही हमने अभ्यास किया था, प्रतिज्ञा की थी क्रोध नहीं करेंगे, आज ही आ गया तो कल हम छोड़ दें कि भाई अब नहीं प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसे ठीक है शांत में जीवन, तो क्या हुआ, जो क्रोध का फोर्स था वो अंदर ही दबा रहेगा। लेकिन दूसरे दिन आप प्रतिज्ञा करेंगे तो पहले दिन अगर चार बार आया, दूसरे दिन तीन बार हो जाएगा, फिर दो बार हो जाएगा, और आपको लगेगा कि प्रतिज्ञा करने से स्थिति शीतल होने लगी है। तो मनोबल का अर्थ है अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ न देना। प्रतिज्ञा में बहुत बड़ा बल है, इसको दृढ़ता बाबा कहते हैं, उसे छोड़ न देना। हार हुई तो छोड़ दिया। मनोबल वाली शक्तिशाली आत्माएं वही कि जिनकी जितनी बार भी चाहे हार हो जाए वो पीछे न हटे, क्योंकि हर हार हमें कुछ अनुभव करा के जाती है, उसका फायदा उठा के आगे के लिए विजयी बनने का और दृढ़ संकल्प रख लेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो इस तरह हम मनोबल को बढ़ाएं और रोज वाइब्रेशंस देने की, सकाश देने की सेवा करें। सकाश देने का सीधा सा अर्थ है बाबा से शक्तियां हमें आ रही हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं, कभी प्रकृति को जा रही हैं, कभी मनुष्यों को जा रही हैं, कभी वायुमंडल को शुद्ध कर रही हैं, कभी अशांत आत्माओं को शांति दे रही हैं। तो बाबा से लेना और चारों ओर फैलाना, लेना और देना, अपने योग को इस तरह दातापन का योग बना दें तो योग भी पावरफुल हो जाएगा, एकाग्रता भी बहुत शक्तिशाली होगी और हम इस फील्ड में आगे बढ़ के अनेक चीजों से मुक्त हो जाएंगे। आपको याद हो इसी साल की मुरलीम बाबा ने कहा व्यक्ति ने, सकाश देने में लग जाओ तो छोटी मोटी सभी बातों से स्वयं ही परे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो दो बातें फिर से मैं आपको याद दिला दूं, समर्पण भाव का अभ्यास और दूसरी बात बाबा हमारे साथ है इस संकल्प का प्रैक्टिकल अनुभव, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इस संकल्प से क्या क्या होता है, रोज दो चार बार इसको अपनी फीलिंग्स में लाओ, याद दिलाओ अपने को कि तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सिर पर उसके आशीर्वाद का हाथ है, वो स्वयं छत्र छाया बनकर तुम्हारे ऊपर रक्षक के रूप में स्थित है। याद दिलाओ अपने को ये, समर्पण करो सब, कर्म किया समर्पित कर दिया, सेवाएं की समर्पित कर दिया, किसी को सुख दिया समर्पित कर दिया बाबा को, उसे याद करने की जरूरत नहीं, इस संकल्प की भी जरूरत नहीं कि हमने किया, जैसे उसने ही कराया और उसके लिए था। इस समर्पण भाव का अभ्यास और बाबा साथ है, इन दो के अनुभवों के द्वारा अब हमें जीवन में बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना है, ताकि समय की जैसी चुनौती हमारे सामने आए उसको हम ठीक ठीक उत्तर दे सके, समय जो कुछ हमसे मांग करे वैसा हम खुशी खुशी से कर सके। ठीक है, तैयार हैं सब इसके लिए? और वैराग लाने का हमने एक तरीका बताया, सबसे लगाव हट जाए तो कभी कभी जो कुछ मेरा है उसको जरा अग्नि में जला के देख लिया करो, कि हमें ही कह दिया जाए कि इसको जला दो जरा, अब तो तुम्हें इसको छोड़ के जाना है ना, तो ये सब कपड़े और जेवर इकट्ठे करके जला दो, तो जला सकेंगे, देख लेना है, ये चित्र बना के देख लेना है कि बाबा को दिया या हमारा ही रह गया है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म स्थिति है ये। ओम शांति।